रोमियों बाब दो। बस मेरे दोस्त, इंसाफ करने वाले चाहिए, कोई भी हो, तेरे पास कोई उज्र नहीं, क्योंकि तू दूसरे को मुजरिम ठहराता है। तू हकीकत में ख़ुद अपने जुर्म की अदालत करेगा, क्योंकि तू दूसरों की अदालत करेगा तू खुद वही करता है। हम जानते हैं कि जो लोग ऐसा काम करते हैं, खुदा उन्हें इंसाफ हक के मुताबिक देगा। लेकिन ऐ मेरे दोस्त, क्या तू सोचता है कि तू जिन कामों के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराता है, अपने आप वैसा ही काम करता है? क्या तू सोचता है कि तू अपने अमल से खुदा के इंसाफ से बच जाएगा? क्या तू उसकी मेहरबानी, तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज समझता है? क्या तू नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है, बल्कि तू अपनी सख्ती और तौबा न करने वाले दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते खुदा का गज़ब पैदा कर रहा है? जिस दिन खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी, खुदा हर किसी को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। जो लगातार अच्छे काम करते हुए जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उन्हें वो बदले में अबदी ज़िंदगी देगा। लेकिन जो अपनी खुदगर्जी से सच्चाई के मुनकर होकर बदी का रास्ता इख्तियार करते हैं, उन्हें बदले में खुदा का गज़ब और कहर मिलेगा। लेकिन मुसीबत और तंगी हर एक बुरे काम करने वाले पर आएगी, पहले यहूदी पर और फिर गैर यहूदी पर। और जो कोई अच्छा काम करता है, उसे जलाल, इज्जत और सलामती मिलेगी, पहले यहूदी को और फिर गैर यहूदी को, क्योंकि खुदा जानिबेदार नहीं है। जिन्होंने बग़ैर शरीयत पाए गुनाह किया, लेकिन बग़ैर शरीयत हलाक भी होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मातहत होकर गुनाह किया, उनका फ़ैसला शरीयत के मुआफिक होगा। क्योंकि शरीयत को सिर्फ सुनने वाले रास्तबाज नहीं ठहराए जा सकते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। इसलिए कि जब गैर यहूदी, जिनके पास शरीयत नहीं है बल्कि आमाल से ही शरीयत की बातों पर चलते हैं, तब चाहे उनके पास शरीयत न रहे तो भी वो अपनी शरीयत आप है। चुनांचे वो शरीयत की जो बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाते हैं, उनका ज़मीर भी इन बातों की गवाही देता है, और उनके ख्यालात या तो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं या उनका दिफा करते हैं। ये तमाम बातें उस दिन होंगी जब खुदा इंसाफ की पोशीदा बातों की अदालत करेगा। जिस खुशखबरी को मैंने लोगों से कहा, उसके तहत यीशु मसीह की मारिफत खुदा लोगों का इंसाफ करेगा। लेकिन अगर तू अपने आप को यहूदी कहता है तो शरीयत पर ईमान रखता है और अपने खुदा का तुझे फ़ख्र है और तू उसकी मर्ज़ी जानता है, शरीयत तुझे जो सिखाती है उसके मुताबिक तू अहम चीज़ें चुन सकता है और ये मानता है कि तू अंधों का रहनुमा है और जो अंधेरे में भटक रहे हैं उनके लिए तू रोशनी है। तू समझता है कि तू बेवकूफ़ को तरबियत देने वाला है और जिनको अभी तालीम की ज़रूरत है उनका तू उस्ताद है, और इल्म और हक जो नमूने शरीयत में है वो तेरे पास है। बस तू जो औरों को सिखाता है, अपने आप को क्यों नहीं सिखाता कि चोरी ना करना, लेकिन ख़ुद क्यों चोरी करता है? तू जो दूसरों से कहता है किसी से जिना ना करना चाहिए, फिर खुद क्यों जिना करता है? तू जो बुतों से नफरत करता है, عبادت گاہوں کی دولت خود کیوں لوٹتا ہے؟ تو جو شریعت کے بارے میں شیخی بگھارتا ہے پھر بھی شریعت کے خلاف ورزی سے خدا کی بے عزتی کرتا ہے۔ چنانچہ تحریر کہتی ہے،
تمہارے ہی سبب سے غیر یہودیوں میں خدا کے نام کی بے عزتی ہوتی ہے۔
اگر تم شریعت پر عمل کرتے ہو تو ختنہ سے فائدہ ہے، لیکن اگر تم شریعت کو توڑتے ہو تمہارا ختنہ کرنا نہ کرنے کے برابر ہے۔ اگر کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہے، وہ شریعت کے حکم پر عمل کرے تو کیا اس کی نامختونی ختنہ کے برابر نہ کی جائے گی؟ ایک شخص جس کا ختنہ نہیں ہوا ہے لیکن شریعت پر چلتا ہے تو وہ تجھے شریعت کی نافرمانی کرنے کا قصوروار ٹھہرائے گا۔ تمہارے پاس لکھی ہوئی شریعت ہے اور ختنہ شدہ بھی، لیکن تم شریعت کو توڑتے ہو۔ جو بظاہر یہودی ہے وہ سچا یہودی نہیں ہے، جو بظاہر ختنہ ہے وہ حقیقت میں ختنہ نہیں ہے۔ سچا یہودی وہی ہے جو باطن سے یہودی ہے، ختنہ صحیح وہی ہے جو دل سے کی گئی ہو، یہ روح سے کیا جاتا ہے، لکھی ہوئی شریعت سے نہیں۔ اور جو شخص دل سے ختنہ شدہ ہے ان کی تعریف لوگوں سے نہیں، خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔